श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय सात श्लोक क्रमांक 15। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये पूछ सकता है कि अरे भाई, भगवान की शरण में जाने से जब माया से मुक्ति हो जाती है तो सारे लोग क्यों नहीं भगवान के पास जाते हैं? तो इस बात को भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। अनुवाद, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, जो पहला शब्द है वो है दुष्कृतिनो। दुष्कृतिवान का अर्थ हो गया कोई बुरे पाप में कार्य करने वाला व्यक्ति, और पाप कार्य करने से व्यक्ति मूर्ख हो जाता है और नराधम हो जाता है। नराधम मतलब, और उसका ज्ञान भी माया के द्वारा हार ले जाता है, असुर भाव प्रकट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के शरण में नहीं गया है तो निश्चित रूप से वो दुष्कृतिवान है, नराधम है, माया अपृत ज्ञान है और असुर भाव को धारण किया हुआ है। अन्यथा भगवान कृष्ण को कृष्ण रूप में स्वीकार करना ये स्वाभाविक है। तात्पर्य, भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांग सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो स्पष्ट है, इसमें समझाना कुछ नहीं है। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो वे बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही गहरी बात श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जितने भी लीडर हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका और उनके जो नेतृत्व में लोग हैं उनके दुखों की निवृत्ति हो, और उसके लिए बहुत सी योजनाएं बनाते भी हैं, पंचवर्षीय, दस वर्षीय और भी बहुत सारी वर्षीय, लेकिन लोगों का कष्ट जाता नहीं है, क्योंकि लोगों को कष्ट देने का कार्य माया के द्वारा हो रहा है, भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहा है, जिसकी शक्ति किसी भी नेता की शक्ति से कई गुना, असीमित गुना अधिक है। और ये दुखों की निवृत्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से होती है, जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था। तो फिर ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण में क्यों नहीं जाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। तो दोनों लोगों को आप एनालाइज कर सकते हैं। जो वास्तविक नेता है वो समझता है कि कृष्ण ही या भगवान विष्णु ही हमारे सच्चे स्वार्थ हैं, उन्हीं के शरण लेने में हमारा सच्चा हित है। और जो केवल अपने पद को प्राप्त करने के लिए, नेता की पदवी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, वो भगवान के कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण के शरण में न तो स्वयं जाते हैं और न अपने जो शिष्य हैं या जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं उनको इस प्रकार की सलाह देते हैं, अभी तो वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है और उसकी शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतने बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। बात कठोर लग रही है लेकिन थोड़ा समझिए। जब तक हम इस जगत को भोगने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से हम लोग प्लान बनाते रहेंगे कि कैसे इस जगत को और अच्छी तरह से भोगा जाए, तब तक भौतिक प्रकृति हमको और अधिक दुख देती रहेगी। ये शास्त्र का सिद्धांत है, प्रहलाद महाराज इस बात को बोलते हैं। तो जितने भी ज्ञान के प्रयास है, क्षमा कीजिएगा, जितने भी योजनाओं के प्रयास हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि हमारा और हमारे समाज को भोग ठीक प्रकार से नहीं मिले हैं, तो कैसे भोगों की व्यवस्था और अधिक की जाए। और आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार की योजना है तो भौतिक प्रकृति के द्वारा अधिक दंड मिलेगा। जैसे कि अब अस्पताल अधिक बढ़ रहे हैं क्योंकि रोग भी अधिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि भोग अधिक बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सोचना कि मैं अपनी योजनाओं के द्वारा भौतिक प्रकृति के प्रयासों के ऊपर को विफल कर दूंगा, ये महती मूर्ता है। और एक ही योजना होनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाए भक्ति के द्वारा। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतना कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। यानी कि इसका अर्थ ये नहीं कि योजना क्या नहीं बनानी चाहिए, भक्त भी योजना बनाते हैं, लेकिन योजना बनाते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो, और ऐसी योजना का समर्थन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होता है क्योंकि भगवान ये चाहते हैं। लेकिन दुष्कृतिवान व्यक्ति भगवान से विमुख करने की योजना बनाता रहता है। लोग किस प्रकार से अधिक नास्तिक बने, अधिक से अधिक ईश्वर विमुख बने, ये योजना एक व्यक्ति की रहती है और वो निरस्त होती रहती है। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। एक आपने बात अगर ध्यान दी हो यहाँ पे, परमेश्वर की योजना का विरोध। परमेश्वर की योजना क्या है? जीवात्माओं को भोग मिले यथोचित, और साथ साथ वो भक्ति करके भगवान की शरणागत होकर भगवान के धाम की प्राप्ति करें। इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है, जो ना एकदम जीरो हो जाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत अधिक हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति को हम जीरो नहीं कर सकते, एटलीस्ट बद्धावस्था में। तो इसलिए दोनों ही की व्यवस्था भगवान ने करके रखी है, इंद्रिय तृप्ति भी मिल सके जीवात्मा को और साथ साथ भगवान की भक्ति भी करके भगवान के धाम की प्राप्ति करे। अंततोगत्वा वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा भक्ति करते ही करते कि इंद्रिय तृप्ति के कोई अवसर ही नहीं होगा। लेकिन प्राय सभी जीवात्माओं के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान की योजना यही है कि कम से कम कुछ तो भक्ति करें तो उससे प्रगति हो जीवात्मा की। लेकिन दुष्कृतिवान योजनाकर्ता यही बताता है, यही प्रयास करता है कि भगवान की तरफ ना मुड़े, केवल इंद्रिय भोग में लगे रहें लोग बाग। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, जो पिछले श्लोक में बताया गया था। इसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। इस बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि चींटियां होती हैं और वो अपने घर का निर्माण करती हैं, बिंबों का निर्माण करती हैं, और अकस्मात उनके शहर में बाढ़ आ जाती है। तो हो सकता है चींटियों के न्यूज़पेपर में एक खबर आए कि आज फलाने शहर में बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, लेकिन ये चींटियां समझ नहीं पा रही हैं कि इस बाढ़ के पीछे वस्तुतः एक पाइप है जिससे कि पानी आ रहा है, और उस पाइप के पीछे एक यानी होस पाइप के पीछे एक व्यक्ति गार्डनर है जिसने पाइप से उस बिंब को या उस घर को बहा दिया या शहर को बहा दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो लोग नास्तिक हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस जगत में जो भी कष्ट आ रहा है वो भौतिक प्रकृति के द्वारा आ रहा है या देवताओं के द्वारा आ रहा है। ये जो सुख भी मिल रहा है वो भी देवताओं के द्वारा मिल रहा है, इसलिए केवल अपनी योजनाओं के द्वारा हम लोग भौतिक रूप से भी सुखी नहीं हो सकते जब तक हम भगवान के नियमों के अनुसार न चलें। तो इसकी ट्रेनिंग एक नेता के खुद की होनी चाहिए और उसे अपने जो लोग उसके अंडर में हैं उनको शिक्षा देना चाहिए कैसे वो ईश्वर के विधान का नियमों का पालन करेंगे। मूड, क्षमा कीजिएगा, ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। पहला, मूड, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। और ऐसा लोग बोलते भी हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान को ये कर्म क्यों समर्पित करूं, इसको तो मैं भोगूंगा। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है, इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश यानी कि रात दिन किसके लिए काम करता है, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भकारता है, किंतु उसके रेखने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो ये आप सारी उपमाओं को समझ ही रहे होंगे, समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुन का सुख तो जानवरों को भी प्राप्त होता है, बहुत सहजता से प्राप्त होता है, तो केवल इन कार्यों को करने के लिए मैं इतना प्रयास क्यों करूं? मानव जीवन जो कि इतना दुर्लभ है उसको क्यों व्यर्थ करा जाए केवल इन पाशविक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होने के लिए? लेकिन मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझेंगे और वो आध्यात्मिक अनुशीलन को, आध्यात्मिक विकास को केवल एक छलावा मान करके बैठे रहते हैं, बावजूद इसके कि वो अपने कर्मों को भोग भी नहीं पाते, सुख से खा भी नहीं पाते, सुख से सो भी नहीं पाते, फिर भी उनको मेहनत करने में बहुत रुचि होती है। तो उनका इस प्रकार का मेहनत करना ये गधे की मेहनत के समान है। अब ये हम पर होता है, हमारे ऊपर है कि हम गधे बना लेना चाहते हैं या बुद्धिमान होकर के केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करें और बाकी समय अपना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा करके आध्यात्मिक उत्थान के लगाएं। ये चॉइस हमारे ऊपर है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः ये कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। नश्वर भौतिक लाभ का अर्थ मतलब इस जगत में आप जो भी कुछ देखते हो आप सब जानते हैं कि अंततोगत्वा वो सब नाश हो जाएगा, तो इसी के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देना ये मूर्खता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए यानी अल्सर हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं, यानी कि जगत के लोगों को संतुष्ट करने में संतुष्ट प्रयास लगे रहते हैं रात दिन, और रिजल्ट हमेशा यही मिलता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। वे अपने अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर वे मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। और जब कोई व्यक्ति बोल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेगा तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण का भजन क्यों कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सुकर विष्टा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को तो निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित व्यक्ति शक्ति यानी प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। तो यानी कि व्यक्ति को भोग के बारे में चर्चा की जाए तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आत्मा का विषय हो तो उसको नींद आ जाएगी, उस बारे में वो चर्चा कोई सुनना नहीं चाहता है। तो ये अगर हमारे हृदय में ये हमारे व्यक्तित्व में इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं तो हमको सजग हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए क्या मैं अपना जीवन, मान लीजिए भक्ति में आने से पहले मैं मूड की तरह बिता भी रहा था, तो क्या आगे भी इसी प्रकार से अपना जीवन बिताते रहना चाहिए, ये विचार हमें स्वयं करके सोचना चाहिए। दूसरा, दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। यानी कि धर्म विहीनता ही नराधम का लक्षण है, भले ही वो भौतिक रूप से कितना भी उन्नत क्यों ना हो, अगर वो धर्म विहीन है तो वो पशु के तुल्य है, इसलिए नराधम है। और ये 4 लाख योनियों की बात प्रभुपाद कर रहे हैं उससे समझ में आना चाहिए कि ये चेतना का अलग अलग स्तर है। भले ही सब लोग पशु के इंसान के रूप में दिखाई पड़े लेकिन सबकी चेतना का स्तर एक नहीं है, इस कारण से इंसान के रूप में दिख सकते हैं लेकिन अलग अलग योनियां बोली जाएंगी उनकी। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। तो अगर धर्म का प्रयोजन ही है भगवान को जानना तो भगवान को हटा देने के बाद धर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो इसलिए इस प्रकार का मनगणन धर्म जिसमें ईश्वर को निराकार मान लिया जाता है वो सच्चा धर्म नहीं है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। यानी कि जो सुसंस्कृत मनुष्य है वो अपने संबंध को भगवान कृष्ण से समझने का प्रयास करेगा भक्ति के माध्यम से। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। यानी कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद, भक्ति के पथ में आने के बाद, भक्तों के संग प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भक्ति में दृढ़ नहीं होता है तो व्यक्ति नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है, किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो अब आप कह सकते हैं हमें तो स्मरण नहीं होता, ठीक है हमको तो स्मरण नहीं होता कि माँ के गर्भ में थे, लेकिन ये तो देखते हैं कि हर बच्चा माँ के गर्भ से ही बाहर आता है और ये तो विचार कर सकते हैं कि माँ का गर्भ जो है ये कोई बड़ी अच्छी जगह नहीं है, और उससे निर्णय लगा सकते हैं कि हाँ हम भी एक समय माँ के गर्भ में रहे होंगे। और शास्त्र की बात सुनकर भी समझना चाहिए कि हमने प्रार्थना करी थी, तो भगवत कृपा से अगर हमको, जैसे कि आज प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा से हमें भगवत ज्ञान प्राप्त हो रहा है भगवत गीता के माध्यम से, तो व्यक्ति को बहुत दृढ़ता से इसको स्वीकार करना चाहिए और बहुत दृढ़ता से हरे कृष्ण मंत्र का जप और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए ताकि माँ के गर्भ में हमें दोबारा ना बैठना पड़े। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। और आजकल के माता पिता क्या कहते हैं, बेटा तुम्हारे भी भक्ति करने का समय नहीं आया, और मान लीजिए बच्चा मर गया तो बोलते
अगर मान जितनी भी हम भक्ति करते हैं कम से कम ये तो रहेगा कि अगले जन्म में हम फिर से भगवान की कृपा से हमको भक्ति करने का मौका मिलेगा। तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को जन्म लेते ही अधिक से अधिक भक्ति करने का मौका दें, बल्कि जन्म लेने से पहले भी गर्भाधान संस्कार के द्वारा एक अच्छी आत्मा को माँ के गर्भ में आकृष्ट किया जाए और उसके द्वारा बचपन से ही उसको प्रसाद खिला करके, नाम जप करा करके, भक्ति पूर्वक माहौल दे करके प्रयास करना चाहिए कि उस बच्चे को दोबारा अब जन्म ना लेना पड़े। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं, किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या निराधम है। तो इसके बारे में कहां लोगों को पता है, कोई संस्कृति ही नहीं रही है कि दसविध संस्कार है वो क्या है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ संस्कार है, सर्वश्रेष्ठ शुद्धिकरण है। कोई व्यक्ति निराधम भी क्यों ना हो, और हम सब लोग तो इसी कैटेगरी में ही हैं, कोई संस्कार नहीं होता है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा व्यक्ति पशु तुल्य भी क्यों ना हो, वो भगवान का प्रेम भी बन सकता है, बन जाएगा अगर वह नाम उच्चारण करता है। जब सारी जनसंख्या निराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसकी उनकी सारी तथा कथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्व समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। यानी कि एमटेक बीटेक पीएचडी पीएचडी जो भी कुछ भी है वो सब व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही बारे में नहीं जानते। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर बात श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो नराधम है वो उनकी शरण में नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन भगवान के भक्त उस नराधम के पास जाते हैं और उसको योग्यता प्रदान करते हैं, कुछ सुकृति देते हैं ताकि वो भगवान की शरण में जाए। तो ये भक्तों की असीमित अनुकंपा है, इसी कारण से भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भले ही वो व्यक्ति भगवान के पास ना आए, लेकिन भक्त जरूर उस व्यक्ति के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं या किसी न किसी तरह से भगवान का प्रसाद देकर के कैसे ना करके उसको सुकृति देते हैं ताकि वो भगवान के पास आने के योग्य बने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। विनीत भाव का मतलब है चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बात को आप प्रयोग से नहीं समझ सकते हैं। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य को डटकर उपेक्षा करते हैं। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य को की डटकर उपेक्षा करते हैं। पिछला प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जब व्यक्ति, हम कितने भी नराधम रहे हों, कितने भी पतित रहे हों, लेकिन अपनी पतित अवस्था को स्वीकार करके अगर नम्रता से भगवद गीता के वचनों को स्वीकार करते हैं तो फिर हम लोग शुद्ध हो सकते हैं, शुद्ध हो ही जाएंगे और भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो नराधम व्यक्ति है वो इस प्रकार से न तो खुद रुचि रखता है और न दूसरों को करने के लिए वो इस प्रकार का प्रोत्साहन देता है। तो आगे का सेक्शन जो है उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा।